क्या आप सभी इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होते कि पुष्प भी लैंगिक जनन करते हैं? कोई भी पुष्प जो आप देखते हैं, उसकी सुगंध, उसका रंग एवं उसका आकार, यह सभी लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि क्या सभी पादपों में पुष्प होते हैं? ये ज्ञात है कि केवल आवृतबीजी पौधों में ही फूल होते हैं और सभी पुष्पों में लैंगिक जनन पाया जाता है। इस अध्याय में हम सभी पुष्प की आकृति, संरचना और लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। परंतु सबसे पहले आप सभी दो ऐसे पुष्पों के नाम बताएं जो कि हमारे घरों में सांस्कृतिक उत्सव में उपयोग होते हैं। आए पुष्प फूलों को लंबे समय से मनुष्यों द्वारा उनकी सुंदरता और सुखद सुगंध के लिए सराहा गया है। आए ये धार्मिक अनुष्ठान में सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। आए ये दवा और भोजन के स्रोत के रूप में भी उपयोग में लाए जाते हैं। आवृतबीजी में पुष्प लैंगिक जनन की इकाई है। फूलों द्वारा नर और मादा युग्मक के उत्पादन और नर युग्मक द्वारा मादा युग्मक के निषेचन से वे पौधों की नई पीढ़ी की उत्पत्ति सुनिश्चित करते हैं। अब हम फूल की संरचना का विस्तार से अध्ययन करें। पुष्प के भाग। पुष्प की संरचना का अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है, वनस्पति भाग जिनमें कर्णिका और दलपुंज आते हैं और जनन भाग जिनमें पुंकेसर और जायांग आते हैं। आए एक फूल में चार विभिन्न प्रकार के पुष्प चक्र होते हैं, सभी क्रमिक रूप से थैलेमस पर व्यवस्थित होते हैं। इनमें से कर्णिका और दलपुंज वनस्पति भागों का निर्माण करते हैं एवं पुंकेसर और जायांग जनन भागों का निर्माण करते हैं। ये सभी क्रमिक रूप से थैलेमस पर व्यवस्थित होते हैं। आइए विस्तार से अध्ययन करें। कर्णिका फूल के सबसे बाहरी घेरे को कर्णिका कहा जाता है। कर्णिका की इकाई को बाह्यक पुंज कहा जाता है। ये पुष्प का सबसे नीचे एवं बाहर का भाग है। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के कई बाह्य दल या अंकुड़ी पाए जाते हैं। ये कलियों को सुरक्षित रखता है। दलपुंज। दलपुंज पुष्प का दूसरा घेरा होता है। ये रंग बिरंगी पंखुड़ियों से बना होता है। इनका मुख्य कार्य कीड़ों को लैंगिक जनन के लिए आकर्षित करना होता है। पुमक। पुमक की इकाई पुंकेसर है जो कि पुष्प का नर अंग है। ई पुंकेसर परागकण उत्पन्न करते हैं। इसके दो भाग होते हैं, परागकोश और दंथल। दंथल लंबा पतला रेशे नुमा होता है और पुंकेसर को फूल से जोड़ने में मदद करता है, जबकि परागकोश एक टर्मिनल द्विपालीय संरचना है जिसमें परागकण उत्पन्न होता है। आए जायांग पुष्प का मादा अंग है जो बीजाणु का निर्माण करता है। आए ये फूल का सबसे भीतरी घेरा है जिसमें एक या एक से अधिक स्त्रीकेसर होते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं, कलंक शैली और अंडाशय। हम सभी इसके बारे में आगे के अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। पुष्प के प्रकार। पुष्पों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है जिसकी सहायता से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। हम यहाँ पुष्पों के वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण। एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प में या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर होता है। नारियल पपीता तरबूज ककड़ी इसके कुछ उदाहरण हैं। उभयलिंगी पुष्प जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। गुलाब लिली सरसों टमाटर बैंगन आम इसके कुछ उदाहरण हैं। समरूपता के आधार पर वर्गीकरण। असममित पुष्प। एक पुष्प असममित होता है यदि इसके बीच से गुजरने वाली किसी भी ऊर्ध्वाधर लाइन द्वारा दो समान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कैना के पुष्प में पाया जाता है। एक्टिनोमोर्फिक पुष्प। जब एक पुष्प को केंद्र से गुजरने वाले किसी भी रेडियल लाइन में दो बराबर रेडियल हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है तो इसे एक्टिनोमोर्फिक पुष्प कहा जाता है। उदाहरण सरसों धतूरा और मिर्च। जाइगोमोर्फिक पुष्प। जब एक पुष्प को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में दो समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है तो इसे जाइगोमोर्फिक पुष्प कहा जाता है। उदाहरण मटर गुलमोहर सेम। लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना समझने के बाद हम उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया को भी समझते हैं। आए पुष्पों द्वारा अपनी जनन कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। नर और मादा युग्मक क्रमशः नर और मादा युग्मक द्वारा निर्मित होते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक को निषेचित करता है और परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण नए पौधे को जन्म देता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों।